नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहां पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहां पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है। 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
मातृशक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहे।
प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
ये परिचर्चा आकाशवाणी FM गोल्ड और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज सवेरे 10:30 बजे से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटी की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्रहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने होर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमरीका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों, तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे नेस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रूपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान। और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।